नमस्कार भारत, तारीख 16 फरवरी, दिन शनिवार। मैं हूँ मानसी दास। सीमा पर दीवार मुद्दे को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने लगाई इमरजेंसी।
I expect to be sued. I shouldn't be sued. Very rarely do you get sued when you do national emergencies.
पुलवामा हमले के बाद फिर उठा सवाल, आखिर कश्मीर के युवा क्यों उठा रहे हैं बंदूक?
ये ट्रेंड जो है हम 2016 से खास तौर पर देख रहे हैं, जब 8 जुलाई 2016 में बुरहान वानी को एक एनकाउंटर में मारा गया।
पाकिस्तान के साथ हुआ सिंधु समझौता, क्या रद्द कर सकता है भारत?
क्योंकि जैसे हमारे पास जवाब नहीं है उनकी टेररिज्म का, उनके पास इंडस वाटर ट्रीटी के इशू पे कोई जवाब नहीं होगा।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कमलेश मठेनी से। अभी अभी मिल रही खबरों के अनुसार अमरीकी शहर शिकागो के ओरोरा में एक बंदूकधारी ने गोलियां बरसाई हैं। इस हमले में कम से कम 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि हमलावर 45 साल का एक व्यक्ति था जिसे मार दिया गया है। भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा में हुए चरमपंथी हमले में मारे गए सीआरपीएफ जवानों के शव शुक्रवार रात को दिल्ली के पालम हवाई अड्डे लाए गए। इन जवानों को अंतिम विदाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पालम हवाई अड्डे पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सेना अध्यक्ष बिपिन रावत भी वहां मौजूद थे। अब जवानों के शवों को उनके परिवारजनों को सौंपा जाएगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको से सटी सीमा पर दीवार बनाने के लिए आपातकाल लागू कर दिया है। उनका कहना है कि अमरीका पर ड्रग्स और अपराधियों के आने का खतरा बना हुआ है, जिसे रोकने के लिए दीवार जरूरी है। वहीं डेमोक्रेट्स इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और इसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान का कहना है कि उनकी सरकार सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोजी की हत्या के मामले में जांच को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। अर्दोगान ने कहा कि वह अमेरिका से जांच का समर्थन करने की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की ने अभी तक हत्या से संबंधित सभी दस्तावेज और सूचनाएं प्रकट नहीं की हैं, लेकिन वो ये सब जाँचकर्ताओं को सौंपेगा। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार में महत्वपूर्ण भूमिकाएं रखने वाले 5 अधिकारियों के खिलाफ नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। इनमें वेनेजुएला की तेल कंपनी के प्रमुख, एक पुलिस यूनिट के प्रमुख और 3 अन्य वरिष्ठ खुफिया अधिकारी शामिल हैं। वेनेजुएला में नेतृत्व को लेकर संघर्ष जारी है। अमरीका विपक्षी नेता खुआन गोइदो को वेनेजुएला के राष्ट्रपति के तौर पर पहले ही मान्यता दे चुका है। अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने पत्रकारों से चीत में नए प्रतिबंधों का बचाव किया और कहा,
Well, I think there are very significant aspects that the combined economic and political pressure that not just
मुझे लगता है कि सिर्फ अमेरिका द्वारा ही नहीं बल्कि दर्जनों देशों द्वारा आर्थिक और राजनीतिक दबाव का प्रभाव पड़ा है। चावेज मादुरो शासन के पिछले 20 वर्षों में जो कुछ हुआ है, ये उससे बहुत अलग है। दुनिया भर की 50 से ज्यादा सरकारें खुआन गोइदो को वैध राष्ट्रपति मानती हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये थे अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रितानी राजगद्दी के उत्तराधिकारी प्रिंस चार्ल्स क्यूबा के दौरे पर जाने वाले हैं। शाही परिवार में ये पहली बार होगा कि कोई सदस्य क्यूबा दौरे पर जा रहा है। प्रिंस और उनकी पत्नी क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कानेल द्वारा आयोजित रात्रि भोज में अतिथि होंगे। हालांकि उनके क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो से मुलाकात करने की संभावना नहीं है। क्यूबा ने इस दौरे का स्वागत किया है। अमरीका के साथ तनावपूर्ण संबंधों के चलते क्यूबा में उच्च स्तरीय विदेशी दौरों में कमी भी आई है। पिछले साल ब्रिटेन में रूस के एक पूर्व जासूस को जहर देने के लिए नर्व एजेंट बनाने का दावा करने वाले रूसी वैज्ञानिक ने उनके खिलाफ नकारात्मक अभियान चलाए जाने का आरोप लगाया है। व्लादिमीर उग्लेव नाम के इस वैज्ञानिक ने बीबीसी को बताया कि दक्षिण पश्चिमी रूस में स्थित उनके गृह नगर में कुछ पर्चे बांटे गए थे जिसमें उन्हें पीडोफाइल बताया गया है, जिसे वो पूरी तरह खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस भी उनसे पूछताछ करती रही है। हालांकि रूस पूर्व जासूस को जहर देने के मामले में शामिल होने से इंकार करता रहा है। राष्ट्रपति चुनाव की पूर्व संध्या पर उत्तरी नाइजीरिया में 66 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कदुना राज्य के गवर्नर ने बताया कि एक बंदूकधारी की गोलीबारी में ये जाने गई हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। मेक्सिको के साथ सटी अमेरिका की सीमा पर दीवार बनाने के मुद्दे को लेकर एक बार फिर अमेरिका में राजनीति गर्म है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आपातकाल की घोषणा कर दी है और कहा है कि इसके बाद अब सीमा दीवार बनाने के लिए उन्हें जरूरी फंड मिल सकेगा, जो देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन डेमोक्रेट्स ने इस पर उनका विरोध किया है और इसे गैर जिम्मेदाराना फैसला कहा है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए कमलेश मठेनी से।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको से सटी देश की सीमा पर दीवार बनाने के लिए आपातकाल लागू कर दिया है। ट्रंप चाहते हैं कि कांग्रेस सीमा पर दीवार बनाने के लिए जरूरी बजट पारित करे। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि अमरीका पर नशीले पदार्थ, मानव तस्कर और अपराधियों का खतरा मंडरा रहा है, जिसे रोकने के लिए दीवार का बनाया जाना जरूरी है। उन्होंने अपने फैसले पर कानूनी चुनौती मिलने की भी आशंका जताई।
Sued? I shouldn't be sued. Very rarely do you get sued when you do national emergency. Now, what are we using it for?
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे मुकदमा होने की उम्मीद है, मुझ पर मुकदमा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति आपातकाल लगाने पर बहुत कम ही मुकदमा किया जाता है। हमारे देश में ड्रग्स और अपराधियों की घुसपैठ हो रही है, जिसे रोक पाना मुश्किल है। दीवार के साथ यह बहुत आसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि हम कोर्ट में सफल होंगे। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप के आपातकाल के फैसले की तुरंत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हाउस जुडिशरी कमेटी ने कहा है कि राष्ट्रपति की घोषणा अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही को दिखाती है। इस फैसले को डेमोक्रेट्स नेता ताकत का गलत इस्तेमाल कह रहे हैं और इसे कोर्ट में चुनौती भी दे सकते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनेटर केर्स्टन जिलीब्रांड ने इसे लापरवाही और नासमझी बताया और कहा,
I think the only national emergency is the humanitarian crisis that President Trump has created at our border.
मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही आपातकाल है और वो है मानवीय संकट, जो राष्ट्रपति ट्रंप ने परिवारों को बच्चों से अलग करके और हमारी मदद चाहने वालों के साथ अमानवीय व्यवहार करके पैदा किया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के सदस्य राष्ट्रपति पद की शक्तियों के इस व्यापक उपयोग के लिए प्रशासन पर मुकदमा करेंगे। राष्ट्रपति का ये फैसला न केवल लापरवाही है बल्कि नासमझी भी है। ये थी डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनेटर केर्स्टन जिलीब्रांड। सीमा पर दीवार बनाना ट्रंप के चुनावी वायदों में से एक है, जिसका डेमोक्रेट सांसद विरोध कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स का कहना है कि इसके लिए सरकारी धन का इस्तेमाल करना गलत होगा, लेकिन बताया ये जा रहा है कि आपातकाल लगाकर राष्ट्रपति ट्रंप सेना और आपदा राहत के मौजूदा बजट को दीवार बनाने के लिए खर्च कर अपना वायदा पूरा कर पाएंगे।
अमरीकी राष्ट्रपति ने लगाई इमरजेंसी। रिपोर्ट सुना रही थी कमलेश मठेनी।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
गुरुवार को भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के पुलवामा में चरमपंथियों ने सीआरपीएफ के जवानों के एक काफिले पर आत्मघाती हमला किया। हमले में सीआरपीएफ के कम से कम 40 जवानों की मौत हो गई है, जिसके बाद घाटी में फिलहाल तनाव का माहौल है। हमले के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। क्या हैं ताज़ा हालात, जानने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की जम्मू में मौजूद हमारे सहयोगी मोहित कंधारी से।
देखिए, कल जिस प्रकार से जम्मू में बंद के दौरान हिंसा भड़की थी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने लगभग 1 बजे के करीब जो है कर्फ्यू इम्पोज किया था, परंतु सेना की जो तैनाती है सेंसिटिव एरियाज में, वो लगभग 3-4 बजे के बीच में हुई। उसके बाद जो है हिंसा पे काबू पाया गया। उसके बाद से किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है, परंतु उस समय तक जो है लगभग 32 गाड़ियां जो है वो जलाई गई थी। उसके बाद आर्मी ने फ्लैग मार्च किया, 9 कॉलम्स आर्मी के ऑन ग्राउंड डिप्लॉय किए गए, और शाम में डिविजनल कमिश्नर जम्मू जो है संजीव वर्मा ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर जो है एक प्रयास किया कि किसी प्रकार से जो है कम्युनल हार्मनी जो बनाए रखने के लिए जो है प्रयास किए जाए। और उसके बाद से जो है अब तक किसी भी बड़ी घटना की कोई सूचना किसी क्षेत्र से नहीं आई है। जम्मू का म्यूनसिपल लिमिट्स है, वहां पर जो है आज भी डीसी जम्मू जो है रमेश कुमार, उन्होंने देर रात ये ऐलान किया कि वो कर्फ्यू कंटिन्यू रहेगा और उसको वो लगातार जो है मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को, और सुबह 8 बजे एक बार वो फिर असेसमेंट करेंगे कि क्या किसी क्षेत्र में कर्फ्यू जो है वो बढ़ाना है उसे, या कुछ जगह से जो है कर्फ्यू में ढील देनी है। इसकी जो है सरकार के जो आला अधिकारी हैं, सुरक्षा बल के जो अधिकारी जो मौके पे तैनात है, वो 8 बजे के बाद जो है इसकी असेसमेंट करेंगे। और आज भी जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो म्युनिसिपल लिमिट्स में जो है जम्मू के CEO है उन्होंने आदेश के अनुसार जो है सभी शैक्षणिक संस्थान बंद करवाए हैं, और कुल मिला के जो है स्थिति तनावपूर्ण जरूर है परंतु कंट्रोल में है।
मोहित जी, इस मामले में NIA के छापेमारी करने और कुछ लोगों को पकड़ने की खबर है, आपके पास इस बारे में क्या जानकारी है?
जी, कश्मीर में जो है लगभग सूचना आ रही है कि 6 लोग जो है वो उन्होंने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के आधार पे जो है उनको पूछताछ के लिए जो है उन्हें बुलाया है, और इससे ज्यादा अभी आधिकारिक सूत्र भी जो है कोई जानकारी ज्यादा नहीं दे रहे। आने वाले समय में पता चलेगा कि पूरी हमले की जो है प्लानिंग जो की गई वो किस प्रकार से लोकल किसी ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से की गई, या चरमपंथी जो संगठन है उनके जो लोग कश्मीर घाटी में या जम्मू में जो उनके स्लीपर सेल हैं किस प्रकार से, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में जो है एक्सप्लोजिव मटेरियल जो है आखिर वहां तक कैसे पहुंचा और उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया गया, पूरे मतलब जो कार जो है उसको तैयार किया गया, उसमें कहीं ना कहीं काफी लोगों का जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इसीलिए NIA की टीम और बाकी फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट्स जो है वो दिल्ली से आए हैं, उन्होंने मौके से भी सैंपलिंग की है, और अब आगे जांच जो है आने वाले समय में बढ़ेगी।
जम्मू कश्मीर में क्या है ताजा हालात, जानकारी दे रहे थे मोहित कंधारी। इस पूर्व नियोजित आत्मघाती हमले में हमलावर ने बारूद से भरी एक गाड़ी को सुरक्षा बलों की गाड़ी से टकरा दिया, जिससे भयंकर विस्फोट हुआ और गाड़ी हवा में उड़ गई। इस तरह का ये पहला मामला था। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये घटना हुई कैसे, बारूद से भरी ट्रक राजमार्ग तक पहुंची कैसे और चूक कहां हुई। अधिकारियों के अनुसार इस हमले के बाद अब उन्हें घाटी में काम करने के अपने तरीके को बदलना होगा। सुनिए BBC संवाददाता विनीत खरे की रिपोर्ट।
अधिकारी कह रहे हैं कि हमले के इस नए तरीके के बाद अब उन्हें घाटी में काम करने के तरीके को बदलना होगा। पूर्व CRPF प्रमुख दिलीप त्रिवेदी ने BBC को बताया कि घाटी में पूर्व में सुरक्षा कर्मियों पर ज्यादातर हमले ID ब्लास्ट या गोलियों से होते थे, जिससे निपटने के लिए रोड ओपनिंग पार्टीज या ROP का इस्तेमाल होता था। इन दलों का काम होता था कि सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही के लिए रास्ता सुरक्षित करना। लेकिन दिलीप त्रिवेदी के अनुसार ये पहली बार है कि जब किसी ने गाड़ी में बारूद भरकर खुद को उड़ा लिया हो, यानी चाहे जो कुछ भी किया जाता लोगों की जान जाना लगभग तय था, इसलिए चरमपंथ से निपटने के लिए नए तरीकों को खोजना होगा। अधिकारियों के मुताबिक इस घटना में शुरुआत से आखिर तक सुरक्षा चूक थी। पूर्व सेना प्रमुख जनरल VP मलिक, जनरल मलिक कह रहे थे कि हमले के लिए गाड़ी और हमलावर को तैयार करने में कई दिन लगे होंगे। ये कैसे हुआ कि हमें कुछ पता ही नहीं चला? ये जिम्मेदारी स्थानीय इंटेलिजेंस ऑफिसर की थी कि वो ये जानकारी इकट्ठा करे, जो कि नहीं हो सका। ये थे जनरल VP मलिक के शब्द। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि इतने लंबे काफिले के साथ चरमपंथ प्रभावित दक्षिणी कश्मीर से गुजरना कितना सही था। जनरल VP मलिक, जनरल मलिक के मुताबिक गाड़ियों की इतनी लंबी कतार का गुजरना आम बात नहीं, लेकिन इस लंबी कतार का कारण था बर्फबारी की वजह से ड्यूटी से श्रीनगर लौट रहे जवानों की आवाजाही पर रोक। कुछ महीने पहले तक जब भी सैनिकों का कारवां गुजरता था तब आम लोगों की गाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं होती थी। जनरल मलिक के मुताबिक राजनीतिक दबाव के बाद आम लोगों को भी अपनी गाड़ियां किनारे से ले जाने की अनुमति दे दी गई, और इस हमले के बाद पुरानी स्थिति को बहाल कर दिया गया है। उधर पूर्व CRPF प्रमुख के दुर्गा प्रसाद कहते हैं, दुर्गा प्रसाद कह रहे थे कि अगर ये कारवां टुकड़े में भी होकर चलता फिर भी बारूद से भरी गाड़ी को आप कैसे रोकते। सूत्रों ने उन्हें बताया कि बारूद से भरी ये गाड़ी राजमार्ग से लगी सड़क पर कुछ देर साथ जवानों के कारवां के साथ चलती रही और उसके बाद एक जुड़ी सड़क से होते हुए राजमार्ग पर आ गई और जवानों के वाहन से टकरा गई। के दुर्गा प्रसाद के मुताबिक इस गाड़ी को रोकने का एकमात्र तरीका था कि राजमार्ग से जुड़ने वाली सड़क पर ट्रैफिक को उस वक्त तक रोके रखा जाए जब तक सभी जवान आगे न निकल जाएं, लेकिन ऐसा करना कितना संभव था। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि चरमपंथ प्रभावित दक्षिणी कश्मीर से गुजरने वाले इस कारवां में जवान आम बसों पर क्यों सवार थे और उन्हें श्रीनगर पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर या बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। अधिकारी कह रहे हैं कि हजारों जवानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल प्रैक्टिकल बात नहीं है और बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल ऑपरेशंस के लिए होता है। मारे गए CRPF जवान जम्मू कश्मीर राजमार्ग नंबर 44 से गुजर रहे थे जब हमला हुआ। ये राजमार्ग श्रीनगर को बाकी देश से जोड़ता है। इस राजमार्ग पर सुरक्षा बलों के अलावा आम लोग भी सफर करते हैं और इसे पूर्ण सुरक्षित रखना आसान नहीं। पूर्व सीआरपीएफ प्रमुख के दुर्गा प्रसाद के मुताबिक शुरुआत में इस राजमार्ग में कुछ ही सड़कें मिलती थीं, लेकिन स्थानीय लोगों की मांग पर इसे ज्यादा सड़कों से जोड़ दिया गया। राजमार्ग को पूर्ण सुरक्षित रखने का मतलब है हर थोड़ी दूर पर एक सुरक्षाकर्मी की तैनाती, ताकि राजमार्ग पर आने वाली गाड़ियों को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन अधिकारियों के मुताबिक इतने सुरक्षाकर्मी उपलब्ध ही नहीं हैं। पूर्व अधिकारी ये भी पूछ रहे हैं कि चाहे घाटी हो या फिर नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़, सीआरपीएफ के जवानों पर ही इतने हमले क्यों हो रहे हैं। वो सीआरपीएफ की लीडरशिप पर भी सवाल उठाते हैं। जनरल वीपी मलिक के मुताबिक ये जरूरी है कि जवानों की ट्रेनिंग, उनकी तैनाती के तरीकों पर ध्यान दिया जाए। उधर सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक 70-80% मामलों में उनके जवानों की तैनाती देश के सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में होती है, जिसके कारण उन पर इतने हमले होते हैं। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले को जिस नौजवान ने अंजाम दिया था वो एक कश्मीरी युवा था। कश्मीर के हालातों को देखें तो बीते 4 सालों से कश्मीर के नौजवान तेजी से चरमपंथी सफों में शामिल हो रहे हैं। हालांकि बंदूक उठाने का ये सिलसिला 90 के दशक से जारी है। ऐसे में सवाल ये है कि आज कश्मीर के नौजवान बंदूक उठा क्यों रहे हैं, इसके पीछे आखिर कारण क्या है। सुनिए हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
बीते साल कश्मीर के पुलवामा में 15 साल का जो चरमपंथी मारा गया वो फरदीन अहमद खांडे था, जो एक फिदायीन दस्ते का हिस्सा था। फरदीन कश्मीर के त्राल इलाके का रहने वाला था। फरदीन भी कुछ समय पहले चरमपंथी बन गया था, वैसे ही जैसे कश्मीर के दूसरे नौजवान बन रहे हैं। मीडिया में छपी रिपोर्टों के मुताबिक वर्ष 2018 में कश्मीर के 191 नौजवान बंदूक उठा चुके हैं, जो कि वर्ष 2017 की तुलना में ज्यादा है। हालांकि 90 के दशक से अभी तक बीच में बंदूक उठाने के रुझान में ठहराव देखने में आया, लेकिन बीते 4 वर्षों से एक बार फिर बंदूक उठाने पर कश्मीर का नौजवान आमादा नजर आ रहा है। वरिष्ठ पत्रकार खुर्शीद वानी।
ये ट्रेंड जो है हम 2016 से खासतौर पर देख रहे हैं, जब 8 जुलाई 2016 में बुरहान वानी को एक एनकाउंटर में मारा गया, तो उसके बाद जो अपराइजिंग कश्मीर में हुई, मैसिव पब्लिक अपराइजिंग, तो उसके बाद लोगों का रुझान जो है वो कई यंगस्टर्स का रुझान, बल्कि साबिक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि हजारों जवान तैयार हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम यह है कि उनके पास हथियार नहीं।
कई जानकार हलकों का कहना है कि जिस तरह से कश्मीर का नौजवान चरमपंथ के रास्ते पर चलने लगा है, उसको रोकने के लिए रास्तों को तलाश करना जरूरी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में गवर्नेंस के प्रोफेसर नूर मोहम्मद बाबा कहते हैं, नूर मोहम्मद बाबा बता रहे थे कि कश्मीर का आज का जो नौजवान बंदूक उठा रहा है ये सिलसिला 90 के दशक से जारी है। वानी कहते हैं कि कश्मीरी नौजवान का बंदूक उठाने का संबंध कश्मीर के असल मसले से जुड़ा है।
क्योंकि ये सारा मामला जो है, ये सारा डिसएंचेंटमेंट जो है, ये असल में कश्मीर के बुनियादी मसले से जुड़ा है।
लेखक और विश्लेषक रूफ रसूल कहते हैं कि जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है उसका प्रभाव कश्मीरी युवाओं पर भी पड़ रहा है।
जहाँ तक कश्मीर के नौजवान का ताल्लुक, कश्मीर का जो नौजवान है, एक तो ये है कि जो ग्लोबल लेवल पर जो कुछ भी हो रहा है, तो उससे कश्मीर का जो नौजवान है वो मुबारक हो सकता है, वो एक आइसोलेशन में तो नहीं रह रहा है। तो दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है उसका डेफिनेटली एक जो अच्छा खासा इम्पैक्ट जो है कश्मीरी साइकी पे भी है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे एक एनवायरमेंट ऑफ सीज से कह सकते हैं, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज।
हालांकि कुछ सुरक्षा जानकारों का कहना है कि जिस सैन्य नीति को कश्मीर में अपनाया गया उसने कश्मीर के नौजवान को बंदूक उठाने पर मजबूर किया है। पुलिस के पूर्व डीआईजी और लेखक अली मोहम्मद वटाली।
फौजी पॉलिसी जो है, आर्मी ऑप्शन इज नॉट एबल टू कंट्रोल दिस, ये कंट्रोल हो ही नहीं रहा है।
कुछ जानकारों का मानना है कि कश्मीरी युवा कट्टरपंथ विचारधारा का असर कबूल कर रहा है। पूर्व पुलिस डीजी और मौजूदा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एसपी वैद।
वही जो पैन इस्लामिक आइडियोलॉजी है, जैश की, अली जी की, जो जो है, इन्हीं का ऐसा बताइए, एक इनोसेंट कश्मीरी बच्चे को एक सुसाइड बम्बर बनाया। तो
बीते साल कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने 250 से अधिक चरमपंथियों को मुठभेड़ों में मारने का दावा किया था। वर्ष 1990 में कश्मीर में स्थानीय नौजवानों ने भारत के खिलाफ हथियारबंद आंदोलन छेड़ा और कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग करते रहे हैं। ماجد جہانگیر، بی بی سی، سری نگر۔
خبر سچ ہے اگر بی بی سی پر ہے۔
سی آر پی ایف کے قافلے پر حملے کے بعد اب یہ سوال بھی اٹھنے لگے ہیں کہ بھارت کے پاس اس طرح کے حملوں کو روکنے کے لیے کیا وکلپ ہیں، کیا بھارت کو بھوشیہ میں بھی ایسے حملے جھیلنے ہوں گے۔ اس بیچ چرچا یہ ہو رہی ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ سندھو جل سمجھوتے کو ختم کرے۔ بی بی سی سنواداتا رجنیش نے اٹل بہاری واجپئی سرکار میں ودیش سچیو رہے کمل سبل سے بات کی اور جانا کہ کیا ایسا کرنا بھارت کے لیے سمبھو ہے۔
بہت ہی افیکٹو شستر ہے جو ہم استعمال نہیں کر رہے تھے، اور مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کیوں نہیں کر رہے۔ وہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی، اس کو آپ سسپینڈ کر دیجئے اور پھر دیکھیے کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھو پاکستان سیدھا ہو جائے گا، کیونکہ جیسے ہمارے پاس جواب نہیں ہے ان کی ٹیررزم کا، ان کے پاس انڈس واٹر ٹریٹی کے ایشو پہ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ دیکھیے آپ، امریکہ نے اے بی ایم ٹریٹی رد کر دی، آئی این ایف ٹریٹی رد کر دی، کلائمیٹ چینج ٹریٹی رد کر دی، ایران کی اگریمنٹ رد کر دی، تو ہم پتہ نہیں کیوں لگے ہوئے ہیں بھائی اس ٹریٹی کو، ایسا ہم نے جیسے 10 کمانڈمنٹس ہوں ویسے اس کو ہم لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے، اور کوئی پریشر نہیں ڈالتے ہیں پاکستان کے اوپر۔
کیا اسے رد کرنے کے بعد کچھ اس کا ریپرکشن ویسا نہیں ہوگا؟ کچھ
نہیں، کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو مسئلے دیے ہیں جو امریکہ نے ساری ٹریٹی رد کر دی، اور چین کو دیکھیے، وہ جو ججمنٹ تھی ٹریبیونل کی اس کو بالکل رد کر دیا ساؤتھ چائنا سی میں۔
جب بھی ایسے حملے ہوتے ہیں کشمیر میں تو بھارت خود کو کچھ زیادہ لاچار پاتا ہے، اس وجہ سے بھی سرکار کو مشکل ہوتی ہے کہ ڈومیسٹک پبلک اوپینین جو ہے، اس لیے پاکستان کو تھوڑا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پکش میں بھی سہانبھوتی کو لے جاتا ہے۔
ہاں بالکل، کیونکہ ان کے پکش کے بات کرنے کے لوگ کافی ہیں، ہمارے میڈیا میں ہیں، ہمارے پولیٹیکل کلاسز میں ہیں، کشمیر میں ہیں۔ کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان سے بات کیجیے، اور اگر کوئی کڑا قدم لے تو اس کے اوپر چرچا کرتے ہیں بہت نیگیٹو۔ تو یہ بہت مشکل ہے، پالیٹکس جو جموں کشمیر کی بڑی مشکل ہے، کیونکہ ہماری جو ڈیموکریسی ہے وہ بہت ہی لوز ہو گئی ہے، اور اس میں کچھ ٹھوس نیشنل سینٹیمنٹ اس کنٹری میں ایسا نہیں ہے کہ سارے جو آرگنز ہیں گورنمنٹ کے، ان کی ایک ہی سہمت ہو کہ بھائی دیش کو بچانا ہے، وہ ایسی بات ہے نہیں۔
پورو ودیش سچیو کنول سبل سے بات کر رہے تھے بی بی سی سنواداتا رجنیش۔ سیماورتی علاقے میں تناؤ یا اس طرح کے حملوں کا سیدھا اثر بھارت پاکستان سیما پر بسے گاؤں اور ان میں رہنے والوں پر پڑتا ہے۔ پرستھتیاں خراب ہو رہی ہوں تو گولی باری کی آشنکا کے چلتے گاؤں کو آنن فانن ہی خالی کرا دیا جاتا ہے۔ حال میں جب پاکستان میں موجود گرو نانک دیو گرودوارے ڈیرا بابا نانک کے درشن کے لیے کرتارپور کوریڈور کو منظوری ملی تو ایسا لگا کہ دونوں دیشوں کے رشتے بہتر ہو رہے ہیں، لیکن پلوامہ حملے کے بعد حالات بدل گئے۔ وہاں کے ستھانیے لوگ، یعنی گرداسپور کے ستھانیے لوگ آج کیا سوچتے ہیں؟ بی بی سی پنجابی سیوا کے سنواداتا سربجیت سنگھ دھالیوال نے گرداسپور کے ڈیرا بابا نانک جا کر لوگوں کی رائے جانی۔
سر دیکھے، کوئی بھی حل جو ہے لڑائی سے تو کوئی بھی حل نہیں نکل سکتا۔ اگر جیسے پورے ورلڈ میں آپ پیچھے ہسٹری پر چلے جائیں، کسی چیز کا حل ہے جو مل بیٹھ کے دونوں دیش آپسی بھائی چارے کے لوگ، ادھر سے پاکستان سے بھی ڈیلیگیشن کوئی ادھر انڈیا لیول کا بھی ہو، ہمارے ادھر پرسنل لوگ بھی ہو جو اس میں مطلب افیکٹ ہوئے ہیں پاکستان سے بھی ہو، ان ساروں کو مطلب مل بیٹھ کے کمیٹی بنائے، ان کی اپنے
بات چیت سے معاملہ حل ہو جائے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جب اڑی میں حملہ ہوا تھا تو آپ کے علاقے میں کیا تھی کہ یہ گاؤں آپ کو خالی کرنے پڑے؟
جب سر اڑی میں حملہ ہوا تھا تو ہمارے علاقے میں جتنے بھی لوگ تھے سبھی اپنا اپنا گھر چھوڑ کر پیچھے اپنے رشتے داروں کے پاس چلے گئے تھے۔ تو اس وقت تو جو گھر میں صرف ایک ایک انسان تھا جو بعد میں جا سکتا تھا، وہ ہی گھر میں رہ گیا تھا۔ یہ جو گاؤں ہے سبھی خالی ہو چکا تھا۔ جب بھی کوئی بھی اٹیک ہوتا ہے، ہمیشہ تو بارڈر ایریا کا جو لوگ ہے جو ہم امن امان چاہتے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں جو ہمارے جو فرزند ہے، جو ہمارے جو بڑے لیڈر ہیں، وہ بیٹھ کر تو اس مسئلے کو سلجھائیں۔
ابھی کیا لگتا ہے آپ کو؟
ابھی تو کوئی چانس نہیں لگتے سر، کیونکہ دیکھو جیکر اگر جو بھی اٹیک ہوا، اس سے پہلے بھی جتنے بھی اٹیک ہوئے ہیں جو بارڈر ایریا کے لوگ ہیں وہ کافی افیکٹ ہوتے ہیں، ان کو جو ان کا جو لائف سرکل ہے سبھی افیکٹ ہو جاتا ہے۔
آپ نے جیسے بتائیں گے بتا رہے تھے کہ کافی لوگ پربھاوت ہوتے ہیں بارڈر علاقے کے، کیا کیا دقت آتی ہے؟
سر دیکھیے، حملہ ہوا بہت بری بات ہے، اور سر اتنے پہلے بھی دو تین بار ہو گیا، پٹھانکوٹ ایئر بیس میں، دینا نگر میں، وہ سر اس کے
آپ لوگوں کو کیا دقت آتی ہے؟
سر ہم کو اس کو جہاں چھوڑ کر پیچھے جانا پڑتا ہے، ہاں پیچھے کے رشتے دار کے پاس جانا پڑتا ہے،
جو فصل ہے وہ
خراب ہو جاتی
ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل بھارت اور پاکستان کے جو سیما ہے وہاں پہ رہتے ہیں، اور ابھی کیونکہ جو پلوامہ میں یہ حملہ ہوا ہے اس کے بعد کہیں نہ کہیں ان کے من میں شنکا ضرور ہے کہ جو کل تک کی استھتی تھی وہ آج استھتی بدلی ہوئی ہے۔
गुरदासपुर में लोगों से बात कर रहे थे सरबजीत सिंह धालीवाल। और कार्यक्रम में अब आगे बढ़ें, उससे पहले जानते हैं कि क्या है अखबारों की सुर्खियां। कमलेश बताइए, अखबारों में आज क्या है?
आज के अखबारों में जैसे कि पुलवामा हमले से सारे अखबार अटे पड़े हैं उसकी खबरों से, कहीं श्रद्धांजलि की खबरें हैं, कहीं बहुत सारे वहाँ से और भी सूचनाएँ निकाली गई हैं। जैसे जनसत्ता के पहले पन्ने पर तस्वीर है कि चरमपंथी हमले के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, और अखबार ने लिखा है कि जवानों की शहादत पर देश भर में शोक आक्रोश। साथ ही अखबार लिखता है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA हमले की जांच कर रही है और लगातार छापेमारी कर रही है। हिंदुस्तान टाइम्स के पहले पन्ने पर खबर है, इंडिया यूनाइट्स इन मॉर्निंग यानी दुख की घड़ी में पूरा भारत एक हुआ। अखबार एक अन्य खबर में लिखता है कि पुलवामा में हुए हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद उमर नाम का एक युवा है जो जैश ए मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर का भतीजा है, यानी उनके बड़े भाई अतहर इब्राहिम का बेटा है। अखबार ने आला अधिकारियों के हवाले से खबर छापी है। इसके अलावा द हिंदू ने पुलवामा हमले पर संपादकीय लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेकर यह इशारा किया है कि पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिशों के लिए अब और इंतजार भारत नहीं करेगा। जनसत्ता में इरफान का कार्टून भी इसी मुद्दे पर है। तस्वीर में दिख रहा है कि पाक अधिकारी जिस कुर्सी पर बैठे हैं, भारत ने उसे पीछे खींच लिया है। साथ ही लिखा है, पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाक से तरजीही राष्ट्र का दर्जा वापस लिया। अमर उजाला के पहले पन्ने पर आज सबसे ऊपर जवानों की श्रद्धांजलि की तस्वीर है। कल देर शाम दिल्ली में जवानों के शव लाए गए और नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। कई अखबारों ने जवानों के परिजनों से भी बात की है। हिंदुस्तान अखबार में एक जवान की पत्नी से बात की है, जिसमें उन्होंने बताया कि धमाके के वक्त उनकी बात हो रही थी अपने पति से, और उन्होंने धमाके की आवाज़ भी सुनी, बिल्कुल फ़ोन पर। और इंडियन एक्सप्रेस ने एक जवान की 9 साल की बेटी की तस्वीर दी है जो अपने पिता के शव का इंतजार कर रही है, और बेटी ने अपने पिता को याद करते हुए कहा है कि बहुत अच्छे थे, हमें अच्छी बातें सिखाई थी उन्होंने।
अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए धन्यवाद कमलेश। और अब चलते चलते सुनते हैं खेल की दुनिया की खबरें।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। BCCI ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली लिमिटेड ओवर क्रिकेट सीरीज के लिए 15 सदस्य भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। ये लगभग वही टीम है जो 30 मई से इंग्लैंड में होने वाले ICC विश्व कप में खेलेगी, जहां पूरी सीरीज के लिए भारतीय कप्तान विराट कोहली और गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। वहीं चयनकर्ताओं ने वनडे के लिए बल्लेबाज KL राहुल और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पर भरोसा जताया है। चयन से पहले खबरें थी कि रोहित शर्मा को T20 सीरीज से आराम दिया जा सकता है, लेकिन उनके साथ सलामी बल्लेबाज शिखर धवन भी पूरी T20 और वनडे सीरीज में बने रहेंगे। 24 फरवरी से शुरू हो रहे भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई टीम 2 T20 और 5 वनडे खेलेगी। और वहीं दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज डेल स्टेन ने कल भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव के 434 विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ा। उनके नाम अब 92 टेस्ट मैचों में 437 विकेट हो गए हैं। वो सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ संयुक्त रूप से 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। स्टेन ने ये उपलब्धि श्रीलंका के खिलाफ खेली जा रही घरेलू सीरीज के दौरान हासिल की। और अब बात बॉक्सिंग की, जहां भारतीय महिला मुक्केबाज सोनिया लेथर, लोवलीना बोरगोहेन और वबीलो बासुमातारी ने बुल्गेरिया में खेली जा रही 70वीं स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इस टूर्नामेंट में 19 भारतीय मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से 10 महिलाएं हैं। इन खिलाड़ियों पर बात कर रहे हैं ऑल इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सिंग के जनरल सेक्रेटरी राजकुमार सांगवान।
देखिए, पूरे एक्सपीरियंस भी हैं। लास्ट टाइम की वर्ल्ड चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट सोनिया लाथर टीम में हैं। उसके अलावा मैरी कॉम को अगर आप छोड़ दें, मैरी कॉम अभी रेस्ट पे हैं, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी में हैं। तो काफी अच्छी टीम है हमारी, दोनों मिश्रण है उसके अंदर, न्यू कमर भी हैं और एक्सपीरियंस्ड भी हैं, तो काफी अच्छी उम्मीदें हैं दोनों टीमों से, चाहे मैन हो और वुमेन हो।
एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं, जिनका मुकाबला रविवार को खेला जाना है। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
कार्यक्रम में आपसे विदा लें, उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर कमलेश मठेनी से।
भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा में हुए चरमपंथी हमले में मारे गए CRPF जवानों के शव शुक्रवार रात को दिल्ली के पालम हवाई अड्डे लाए गए। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको से सटी सीमा पर दीवार बनाने के लिए आपातकाल लागू कर दिया है। डेमोक्रेट्स नेता इसका विरोध कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान का कहना है कि उनकी सरकार सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या के मामले में जाँच को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले 5 अधिकारियों के खिलाफ नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। ब्रितानी राजगद्दी के उत्तराधिकारी प्रिंस चार्ल्स क्यूबा के दौरे पर जाने वाले हैं। वो पहले ऐसे सदस्य होंगे शाही परिवार से जो क्यूबा दौरे पर जा रहे हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। अगला प्रसारण दिन भर आज शाम 7:30 बजे। तब तक बने रहिए bbchindi.com के साथ। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।